सभी नागपुर वाले सच ही बहुत भाग्यशाली है जो क्लासेस की शुरुआत परम श्रद्धेय जानकी दादी जी से मिलके की थी और आज भट्टी के पूर्णाहुति के दिन हम फाइनल स्टैंप आदरणीय दिव्या बहन जी के पास से लगवा रहे हैं। आदरणीय दिव्या बहन जी वैसे महाराष्ट्र वाले आप सब तो जानते होंगे ही, फिर भी मुंबई बोरीवली सब जोन को बड़ा सुचारू रूप से आप निर्देशन दे रही है, साथ में हमारी ट्रांसपोर्ट विंग की आप चेयरपर्सन भी हैं। और भाग्य मैंने आज इसीलिए कहा कि ट्रांसपोर्ट विंग की ज्ञान सरोवर में कॉन्फ्रेंस चल रही है और इसीलिए आप ज्ञान सरोवर में हैं और इसीलिए आज हम सबको ये मौका मिला है जो आज हम आपसे स्वस्थिति से परिस्थिति को परिवर्तित करना है। परिस्थितियों को आने से हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे राइट एटीट्यूड से वो परिस्थिति को बड़ा से छोटा जरूर कर सकते हैं। तो आज इस विषय पर आप हमें मार्गदर्शन देंगी, आज इस सभा में आपका हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आपकी विशेषता ये रही है कि आप बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में नवीनता और रचनात्मकता मुंबई जैसे बड़े शहर में भी वहां के अनुरूप बहुत नवीन प्रकार की सेवाओं का शुभारंभ आपने किया है। यज्ञ में जितने भी हमारे गीत बन रहे हैं उन सभी गीतों की रिकॉर्डिंग में आपकी ऑलमोस्ट प्रमुख भूमिका रही है। उसी तरह बॉलीवुड की सेवाओं में भी आपका विशेष पार्ट आज तक रहा है। ऐसी एक विशेष आत्मा जिसके द्वारा बाबा ने बहुत वैरायटी फील्ड्स की सेवाएं करवाई है और अभी करवा रहे हैं, ऐसी विरल विभूति आज हमें प्राप्त है, ये हम सबका भाग्य है। मैं आदरणीय बहन जी से निवेदन करती हूँ कि आज के विषय को आप स्पष्ट करें और आज हम भट्टी से ऐसी सुंदर छाप लेकर के जाए जो हमारे पुरुषार्थ में सदा सदा के लिए ये एक कदम आगे बढ़ाने का साधन बन जाए।
ओम शांति। स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति में परिवर्तन विजय। तो स्वस्थिति क्या है सबसे पहले और परिस्थिति क्या है। स्वस्थिति यह हमारी स्वयं की बनाई हुई अपनी रचना है, अपनी अवस्था को हम खुद बनाते हैं। तो हमारी स्वयं की रचना है स्वस्थिति। परिस्थिति ये पराई रचना है, दूसरों के द्वारा आने वाली चीज है। अब परिस्थिति कई प्रकार से सामने आती है। परिस्थिति वो चीज है हमारे कमजोर संकल्पों की रचना है। स्वस्थिति यह हमारे श्रेष्ठ संकल्पों की रचना है। तो परिस्थिति ये जो कमजोर संकल्प हम करते हैं उनसे उत्पन्न होने वाली स्थिति है। और उसके पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हमारी स्वयं की स्थिति भी हमारे संकल्पों से बनती है। संकल्प सोच का कितना इम्पोर्टेंट है। कई बार देखा गया है कि व्यक्ति बहुत सेफ जगह पर बैठा हुआ होता है, जो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां, लेकिन खुद के जीवन में कोई ऐसी भयानक डरावनी घटना घट चुकी है और वो सोच जब आता है, वो स्मृति जब इमर्ज होती है, तो ऐसे सेफ एटमोस्फियर में भी उनको डर लगने लगता है, अशांति फील करता है, बेचैनी लगती है। कई बार कहते हैं कि डर के मारे मेरे तो रोमांच खड़े हो गए, हाथ पांव कांपने लग गए। अभी कोई ऐसी चीज नहीं है जो डरने वाली हो, डराने वाली हो, लेकिन खुद के विचार सोच से परिस्थिति उत्पन्न हुई है। नहीं अभी कुछ, लेकिन डर लग रहा है। क्यों लग रहा है? संकल्प में, सोच में वो बात है। और इससे समझ में आता है कि संकल्पों की हमारी अवस्था पर और हमारे शरीर पर और वातावरण पर कितना इम्पैक्ट होता है। अच्छे वातावरण में भी एक डरावना एटमोस्फियर क्रिएट हो जाता है, वो वायुमंडल बन जाता है, वो तैयार हो जाता है, शरीर पर उसकी इफेक्ट, मन पर उसकी इफेक्ट होती है। तो कई बार देखा है कि बात बहुत छोटी होती है, लेकिन सोच 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 के वो बात इतनी बड़ी लगने लगती है। संकल्प का ही प्रभाव है मन पर। बात बहुत बड़ी नहीं है, कई बार किसी ने कुछ हमें कह दिया, शिक्षा दे दी, समझ दे दी, सबके बीच में कह दिया, मुझे लगा कि ये मेरा अपमान हुआ, कोई भी ऐसी घटना हो, अब उसी पर बहुत चिंतन चलता रहता है। ऐसे क्यों किया, ऐसे थोड़ी करना चाहिए, सबके बीच में थोड़ी बोलना चाहिए, चलो बोलना भी था तो ऐसे थोड़े बोलना चाहिए, अभी सबके मन में मेरे बारे में क्या सोच चलता होगा, सब मेरे बारे में क्या विचार करते होंगे, क्या मेरी इम्प्रेशन पड़ेगी, सब लोग मुझे कौन सी दृष्टि से अभी देखेंगे, मेरा स्वमान नीचा हो गया, सबकी दृष्टि मेरे प्रति बदल गई, इन्होंने ऐसे किया तो। अब ये सब व्यर्थ सोच जितना डेप्थ में चलते हैं उतनी फीलिंग ज्यादा आती है। और वो बहुत भारी लगने लगती है। मन से भी हम बहुत ही हैवी भारी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका चिंतन बहुत चला। मैं समझती हूं कि ज्ञान के बारे में इतना डेप्थ में नहीं सोचते हैं जितना इस प्रकार की घटनाओं के बारे में, जितनी डेप्थ में गहराई में हम चले जाते हैं, उतना ज्ञान की गहराई में जाएं तो अलग एक स्थिति क्रिएट होगी, हमारी अलग बनेगी। जैसे मैंने कहा कि किसी ने सभी के बीच में अपमान कर लिया, अब उसका गहरा सोचने क्या परिणाम लाया। उसी साथ साथ हम ज्ञान के दृष्टिकोण से देखें और वो सोच चलाए कि भाई किसका अपमान। और बाबा ने कहा है कि मान शान से तो परे जाना है, हर समय कोई मुझे रिस्पेक्ट देता रहेगा ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है, कभी कोई कुछ कह भी देगा ये तो होना ही है, होता ही है। और किसी के कुछ कह देने से और ही मेरा अपने ऊपर अटेंशन ज्यादा गया, थैंक्स आपने ऐसे कहा तो, कि मेरा ध्यान मेरे प्रति अधिक, और कोई ऐसी बात हो तो मैं चेंज कर लूं, और नहीं है तो कोई भले कहे क्या फर्क पड़ेगा, जो मेरे बारे में कहा ऐसा है नहीं तो कोई बात नहीं, फिर मुझे घबराने की, डरने की, डिस्टर्ब होने की तो बात है ही नहीं। इन्होंने मेरे बारे में कुछ कह दिया है और वो इम्प्रेशन पड़ी है, वो दृष्टिकोण उनका बना है, वो सुन के बना है, लेकिन व्यक्ति सिर्फ सुनता ही नहीं है, क्या करता है, देखता भी है। अब मेरी एक्टिविटी, मेरे अंदर जो उन्होंने कहा वो मेरे में नहीं है, फिर भी उनको लगा, उन्होंने कहा, ठीक है, अब मेरे अंदर वो बात नहीं है तो मेरे एक्शन में, मेरे व्यवहार में वो बात आएगी नहीं, और लोगों को नहीं दिखाई देगी तो सब समझेंगे कि इन्होंने कहा तो सही लेकिन ऐसा हमको लगा नहीं, हम तो उनके नजदीक गए, हम तो कभी ऐसा एहसास ही नहीं किया। इम्प्रेशन ठीक हो गई ना? अभी उसको सिद्ध करने जाऊं, जिद करने जाऊं, उसको प्रूव करने जाऊं तो मेरी एनर्जी कितनी जाएगी, है ना? और एक दुश्मनावट बढ़ेगी भी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलती और मैं अपने आप में कुछ है तो चेंज कर देती, नहीं है तो मेरी जो हूं मैं ऐसा अपना व्यवहार कंटिन्यू करती हूं। अपने आप में वातावरण क्या होगा, मेरा समय बच गया और मेरा प्रभाव भी कुछ अलग हुआ। कितने सारों के बीच में बोला था तो भी इन्होंने कुछ माइंड नहीं किया, शांत रहे, और देखो वास्तव में ये तो ऐसे है ही नहीं। शांति से समय बचा करके अपना काम हो गया, अपना काम हो गया ना, एनर्जी क्यों वेस्ट करें हम। इसलिए कोई भी बात होती है तो उनको ज्ञान की दृष्टि से, गहराई से उस पर सोचते हैं तो वो अपमान का जो प्रभाव था वो हट गया, वो निकल गया। आई बात, लेकिन चली भी गई, उसको हमने रवाना भी, छुट्टी भी दे दी शांति से चुपचाप, है ना? तो स्वयं की स्थिति कितनी अच्छी रहेगी ना उससे। तो ये है हमारी स्वस्थिति। इसलिए दिन भर के अंदर भी भिन्न भिन्न व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं और भिन्न भिन्न संस्कार वाले भिन्न भिन्न स्वभाव वाले व्यक्तियों के संपर्क में हम आते हैं और उन सब का प्रभाव प्रिंच मेरे ऊपर मैं पढ़ने दूंगी तो रात्रि को मेरा स्वरूप क्या होगा। अभी कुछ तुम्हें पहले ही बोरीवली में क्लास कराया तब कहा कि वो होली के बाद धुलेठी आती है ना, तो कोई लाल रंग लगाता है, कोई ग्रीन लगाता है, कोई सिल्वर, कोई गोल्डन, कोई ब्लू, कोई कैसा, कोई कैसा। तो हमारा ओरिजिनल रंग तो छिप ही जाता है और वास्तव में भिन्न भिन्न प्रकार के रंग लग जाने से कोई हमको आप पहचान ही नहीं पाता कि अरे ये वो है, पहचाने नहीं जाते हैं क्योंकि अलग अलग कलरों का असर चेहरे पर है तो ओरिजिनलिटी चली गई। ऐसे रात्रि को चेक करे दिन भर में अलग अलग व्यक्तियों के विचारों की, व्यवहार की, बातों की, अलग अलग प्रकार की असर मेरे मानस पर हुई तो ओरिजिनल मेरी स्थिति तो रही नहीं, थी कुछ और, बन गई कुछ और, ये स्टेज होगी तो मेरी स्वस्थिति तो फिर रहेगी नहीं ना। इसलिए उन प्रभाव से मुझे अपने आप को परे रखना है, उसके इफेक्ट से मुझे अपने आप को सेफ रखना है। जैसे अभी ठंडक लग रही है तो शॉल ओढ़ी है ना, इसकी इफेक्ट से अपने आप को क्या कर रहे हैं, सेफ रख रहे हैं। अभी ठंडी को तो ये नहीं कह सकते हैं कि तू ठंडी नहीं हो, है ना, ठंडी नहीं पड़े, बारिश नहीं आए, ये तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। और ना भी नहीं कह सकते हैं और ना कहने पर कोई मानने वाला भी है नहीं। मुझे अपनी सेफ्टी का सोचना होगा ना, मुझे अपने रक्षा के लिए मेरा कवच मुझे बनाना होगा। तो आज बाबा ने नॉलेज दी है, उस बेस पर हम ये समझ पाते हैं कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग व्यवहार है, हर एक का पुरुषार्थ भी तो नंबरवार है, एक जैसा तो है नहीं, तो परिवर्तन भी एक जैसा नहीं है। अब जब तक जितना चेंज हुआ है उतना ही वो ठीक चल पाएंगे, तो उनसे नाराज होना, डिस्टर्ब होना या बदले की भावना रखना, ये स्वयं मेरी स्थिति को बिगाड़ने वाली बात है। और कई बार मैं सोचती हूँ कि हमें सोचना चाहिए कि कमी दूसरी आत्मा में है और उसका इफेक्ट मैं लेती हूँ तो उनके कर्म की भोगना मैं भोगती हूँ, उनमें है ना वो चीज, मेरे में नहीं है ना, तो मुझे उसके इफेक्ट में नहीं आना है, मैं क्यों वो भोगना भोगूं, मैं उससे उपराम रहूं, ये समझ से रहूं कि हर एक का पुरुषार्थ है और वो अपने पुरुषार्थ के हिसाब से कर रहे हैं। दूसरा मुझे ये सोचना है कि मेरे मुझ आत्मा में जो संस्कार है, मुझे उस संस्कारों को इमर्ज करके चलना है, मुझे मेरे अपने संस्कारों की एग्जीबिशन लगानी है। सामने वाले ने अलग विषय की एग्जीबिशन लगाई, मैंने अपनी, मेरे अपने संस्कारों की प्रदर्शनी। कर्म से ही प्रदर्शन होता है संस्कारों का, आत्मा के कैसे संस्कार है कैसे पता चलेगा, कर्म से ही। अब उनके जो संस्कार है उनकी एग्जीबिशन वो लगा रहे हैं, ठीक है वो भले लगाए, मेरे अपने संस्कार है उसका प्रदर्शन मैं करूं, लोग अपने आप में डिसाइड करेंगे, मुझे चिंता करने की, मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। उनकी प्रदर्शनी ठीक नहीं है, हमारी बड़ी है, ये सब सोच में भी जाने की मुझे जरूरत नहीं है। मेरी अपनी अच्छाई को मुझे प्रदर्शित करना है, लोग डिसाइड करें ना मुझे क्यों सोचना है। मुझे अपने कर्मों से सेटिस्फेक्शन है, मैं अपने कर्मों से संतुष्ट हूं, उसका सुख, उसका आनंद, उसकी खुशी वो मुझे भोगनी है। उनके कर्मों का भोग मुझे इफेक्ट में आऊंगी तो मुझे भोगना पड़ेगा ना। ये बारिश के सीजन में वायरल फीवर होता है, एक को हुआ, दूसरे को जम्स लगा, वो भी गर्म हो गया, वो गर्म था, उसकी बॉडी गर्म थी, वायरल लगा, अभी मेरी बॉडी भी गर्म हो गई, इफेक्ट हुआ ना। अभी सबको नहीं होता, जिनकी रेजिस्टेंस पावर अच्छी है उसको उसका इफेक्ट नहीं होता है, जो कमजोर होते हैं उनको तुरंत इफेक्ट हो जाता है। और इसलिए हम कहते हैं कि उसने गुस्सा किया तो मेरे को भी गुस्सा आ गया। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि मैं तो गुस्सा नहीं करती, उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया, करवाया इफेक्ट हुआ और हम उस इफेक्ट में आ गए, और इसीलिए हमारे से हुआ। वो इफेक्ट में नहीं आते तो नहीं होता है ना। तो हमारी स्वस्थिति को बना के रखना ये मेरे, और इसीलिए कि जो विस्तृत थॉट्स हो उसकी गहराई में और उसके सोच की डेप्थ में मुझे नहीं जाना है। उसके बजाय उनका जो इलाज है, उनका जो उपाय है, जो उसकी मेडिसिन है, उसकी डेप्थ में मुझे जाना है तो उसका असर मेरे पर नहीं होगा। जैसे आप देखिए नदी है, कहीं पहाड़ों से निकलती है, जाकर के समुद्र से, सागर से हर नदी मिलती है। अब निकलती कहां से है? उनका लक्ष्य है सागर में समा जाना, सागर से मिलना, उसमें समा जाना। अब निकलती वो कहां से है? अब बीच में कई बाधाएं आती है, लेकिन वो कभी कंप्लेन नहीं करती है। जहां बाधा आई वो अपना राह अलग ले लेती है, और इसलिए नदी देखो तो ऐसे सीधी नहीं बहती, कहां 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 झाड़ी पहाड़ी खड्डे कहां 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 से गुजर गुजर करके जाके सागर में समा जाती है। रास्ते में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो अपना राह निकालती है, अपना मार्ग निकालती है। ऐसे हर एक के जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां तो आएगी। वर्तमान युग ये तो समस्याओं का सागर है, परिस्थितियों का सागर है, और वो न आए बाबा को कहें बाबा मेरे पास कोई परिस्थिति दे जानी चाहिए, तो ऐसा तो बाबा ने कहा जंप लगाया है सागर में, और फिर कहते हो कि बड़ी बड़ी वो लहरें उसमें ना आए, ये तो पॉसिबल नहीं है। आएगी ना, उसको तो रोक उत्पन्न होती है और लहरें आती है, और लहरें उत्पन्न भी समुद्र के अंदर से होती है, आती है किनारे तक और फिर चली भी जाती है कहां पर, सागर में ही चली जाती है। तो ये तो ये युग है, तो उसमें रोक तो नहीं सकते हैं, चाहे आर्थिक परिस्थिति आए, चाहे शारीरिक आए, मन सीखाए, किसी व्यक्ति के थ्रू आए, किसी प्रकृति के थ्रू परिस्थिति आए, और कई बार स्वयं के द्वारा भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, खुद के द्वारा भी परिस्थिति को हम उत्पन्न करते हैं, तो ये तो आएगी। लेकिन ये स्मृति में रखना है कि जो आता है वो जाता है, रहने के लिए नहीं। आप लोग आए हो, जाने वाले हो ना, कि यहीं रहने वाले हो, जाने वाले हो। कोई भी चीज आई है वो जाने के लिए ही आई है ना? जो भी आई है बात, वो जाने के लिए, वैसी की वैसी सारा समय पर वो रह नहीं सकती। ये भी स्मृति में रखना है स्वस्थिति में स्थित रहने के लिए कि परिस्थिति भी बदलती है, चेंज होती है, परिवर्तनशील हर चीज है संसार में, तो परिस्थिति भी तो परिवर्तनशील है, केक जैसी है। सुबह में देखो, मैं क्लास कराने आई तो कितना अंधियारा, कितनी फॉगी थी, कितनी ठंडक के परसेंटेज ज्यादा थे, और अभी देखो बदल गई ना, कि वैसी है, ज्यादा समय नहीं टिक सकती, चेंज होती है। अभी उस समय पर हमको धैर्यता, शांति, स्टेबल और जो परिस्थिति है उसको आराम से प्रिकॉशन के साथ मैं पसार तो करना ही है, पास तो होना ही होना है। कहते ना भाई, एग्जाम है, मुझे पास होना ही है, ठान लिया है तो उसके लिए मेहनत करता है। इसमें भी मुझे पास होना ही है, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं करूं। कई बार क्या होता है कि परिस्थिति आती है तो हम उसका ही वर्णन करते रहते हैं, उसके ही गीत गाते रहते हैं, इसलिए तो दर्द भरे गीत बने, रोने वाले गीत बने, क्योंकि उस परिस्थिति के गीत गाते रहे, वही वर्णन हम करते रहे। अब उसमें व्यस्त होने से परिस्थिति का इफेक्ट ज्यादा है, लेकिन उसके बजाय उस परिस्थिति को पास कैसे करना, सामना कैसे करना, उस सोच में मैं करूं, मेरी एनर्जी उसमें लगाऊं। जैसे बाबा कहते हैं पॉजिटिव सोचो, अब उसमें जाऊं तो मेरी एनर्जी क्या होगी, मेरी शक्ति बढ़ती है। श्रेष्ठ विचार, शुभ विचार, अच्छे से अच्छा विचार, मेरे सोच से मेरी ताकत आत्मा की क्या होती है, बढ़ती है। बाबा जो स्वमान देते हैं वो क्या है, एनर्जी के लिए ही तो है कि मैं एक विशेष आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं होली हंस हूं, डबल ताजधारी हूं, मैं तो राजाओं का राजा हूं, जो भी स्वमान है, ये सारे सोच क्या करते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं, हमारे में शक्ति भरते हैं। तो परिस्थिति के समय पर मुझ आत्मा में एनर्जी आए, शक्ति आए, मेरा बल बढ़े, ऐसे सोच। और कई बार आत्मा परिस्थिति के प्रभाव में इतनी आ जाती है कि जो अच्छा सोच भी नहीं पाती। कई बार कहते हैं ना कि भाई ऐसे सोचो, कहते आप कहते तो हो लेकिन वो सोच मेरा रहता नहीं है, आता नहीं है, इतनी वीकनेस है, इतनी मेंटली कमजोरी है कि जो अच्छा सोच भी नहीं पाता है, इतनी वीकनेस आ जाती है। अब इस समय पर क्या करें, खुद ऐसे पॉजिटिव सकारात्मक सोच, अच्छी अच्छे अच्छे विचार बाबा ने हर परिस्थिति के सॉल्यूशन के लिए इतनी अच्छी समझ दी है, लेकिन समय पर स्मृति में आए। बाबा कहते हैं टाइम पर हथियार याद आना चाहिए, है तो सब कुछ, कहते पड़ा है मिल नहीं रहा है, या तो याद नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें बाबा ने दी है, लेकिन समय पर स्मृति में आना, आने के बाद उसको यूज करना विधि पूर्वक, तो सिद्धि मिलेगी। लेकिन समय पर वो स्मृति में नहीं आ रही है, तब क्या करना चाहिए कि ऐसे बाबा के महावाक्य अव्यक्त मुरलियों को लो, भिन्न भिन्न विषयों में, हर विषय के बारे में बाबा ने कहा है, उसकी स्टडी कर पढ़ो। तो जो सोचने की शक्ति नहीं है ना, वो पढ़ते 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 है ना, आप में वो ताकत आ जाएगी सोचने की, क्योंकि आप चीज ही ऐसी पढ़ रहे हो कि जिससे आप में बल भरेगा, और फिर आप उस सोच को आप रिवाइज कर सकोगे, रिपीट कर सकोगे, धीरे धीरे वो ताकत बढ़ करके आप एक्शन में उसी को ला सकोगे। लेकिन खुद के विचार कमजोर, फिर पढ़ते भी हम कमजोर बातें ही है, औरों से सुनते भी फिर हम कमजोर ही है, तो फिर हमारी कमजोरी और स्ट्रांग होती जाती है। हाँ हाँ मैं तो ऐसा सोचती थी, आप भी ऐसे ही कहते हो ना, आप ऐसे ही बताते हो ना, आपका भी एक्सपीरियंस ऐसा ही है ना, कहते हाँ, कहते बस तो मेरा बराबर ही है, मैं राइट हूँ, है ना। तो कमजोरी में पक्के होते हैं, वो स्टैम्प छाप अपने आप पर हम क्या करते हैं, लगा देते हैं, क्योंकि पढ़ते ऐसा, सुनते ऐसा, देखते ऐसा, तो फिर धीरे धीरे क्या लगता है कि हाँ ये तो सब नेचुरल, ऐसा सबके साथ होता है, तो मेरे साथ हुआ तो कोई बड़ी बात, ये तो सबके साथ होता है, तो मेरे साथ भी हो रहा है, तो ये कोई गलत नहीं हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। अभी कमजोरी वो बराबर है, एक्सेप्ट होती जाती है, और ऐसा होता ही है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी, तो ये तो नेचुरल है ना, ऐसा आप सबके बीच में बोलो तो अपमान होना, ये तो नेचुरल चीज है ना, हमको नेचुरल लगने लगती है। कारण, क्योंकि वैसा पढ़ना, वैसा ही देखना, वैसा ही सुनना, तो हमारी वीकनेस, हमें तो राह निकालनी है, रास्ता ढूंढना है, एक नहीं तो दूसरा। कई जगह पर देखो कि जो रोडवेज बने हैं उसके अंदर कहीं पहाड़ियां आ जाती हैं, तो उन्होंने पहाड़ियों को तोड़ तोड़ करके अंदर से क्या कर दिया है, रास्ता निकाल लिया। अब सारे पहाड़ को तोड़ने जाओ तो एनर्जी बहुत जाएगी, अंदर से होल करके निकलना है, बाहर रास्ता निकालना है ना। कोई भी परिस्थिति आए उसमें से हमें मार्ग निकालना है, और डरना नहीं है, घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है, हमारा बैकबोन बड़ा मजबूत है ना, शक्तिशाली, सर्व शक्तिमान है, उसकी स्मृति, उसकी याद, उनके आगे अपनी बात रखो और कहो कि आप मुझे दिशा दिखाओ, अंधियारे में रोशनी देने वाला, परिस्थिति अंधियारा है और उसमें मार्ग दिखाना ये बाबा की ज्ञान की रोशनी है, जिससे हमें दिशा मिलेगी, हमें राह है वो मिलेगी। तो बाबा के आगे रखें, दूसरों के आगे रखने से कई बार वो हमको कमजोर करेंगे, या हमारे पर हंसेंगे। बाबा के आगे अपनी बात रखो और उनसे सॉल्यूशन मांगो कि आपसे ही मुझे चाहिए, आप ही मेरी बुद्धि को टच करो, आप ही मुझे संकल्प दो। मैं कई बार उदाहरण देती हूं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी मां के बिना किसी के हाथ का नहीं खाते। कोई खिलाने जाए कहेंगे नहीं मम्मी, मम्मी खिलाए मेरी तो ही खाऊं। तो मम्मी को कितना ध्यान देना पड़ता है, मेरे बिना किसी का नहीं खाएगा ये। ऐसे ही बाबा भी समझता है मेरे सिवाय किसी से सॉल्यूशन लेने वाले है ही नहीं, इनको तो मेरे से ही चाहिए और इसलिए मुझे देना भी पड़ेगा ना। बाबा को सॉल्यूशन देना पड़ेगा क्योंकि और किसी से नहीं चाहिए उनको, तो बंधा हुआ है बाबा, बंधा हुआ है रिलेशन से, फर्ज से, समय अनुसार बाबा बंधा हुआ है देने के लिए, उनसे सॉल्यूशन चाहिए। कई बार देखते हैं कि जो परिस्थिति होती है वो हमारे खुद के नेचर के कारण उत्पन्न होती है, हमारे खुद के स्वभाव, हमारे खुद के संस्कार, हमारे खुद के बोल द्वारा प्रॉब्लम को क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं, परिस्थिति को पैदा करते हैं। अभी हमने ही उत्पन्न किया फिर हम ही रोते हैं, हमने ऐसी रचना रची और वो रचना अब मेरे को दुखी कर रही है। आज कई माँ बाप रोते हैं, कई माँ बाप रोते हैं अपने बच्चों के प्रॉब्लम के कारण। अभी रचना खुद की ही है, किसको कहें, और उनसे ही समस्या है अभी उनको, खुद की रचना से है। वैसे हमने भी अपने खुद के द्वारा उस परिस्थिति को उत्पन्न किया है। जैसे कईयों की भाषा कड़वी होती है, टॉन्टिंग वे से बोलना होता है ना? कई बार बहुत जोर से रफ बोलना, रूढ़ बोलना, जोश में बोलना, रौब में आकर के बोलना, कटाक्ष में बोलना, भाषा में भी बहुत सारी बातें हैं, वैरायटी प्रकार की। अब इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम अभी क्यों क्रिएट हुआ, मेरे शब्दों के द्वारा। कई बार कई व्यक्ति को है ना बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है, कईयों को बहुत फास्ट, जो दूसरे वाले है ना समझ भी ना पाए उनकी बात को, इतना तीव्रता से बोलते हैं। अब गड़बड़ होगी ना, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि उसने बोला क्या, उसने समझा क्या, किया क्या, तो समस्या पैदा होगी। अभी बोल से ही तो हुई ना समस्या, भाषा से। इसीलिए कहावत भी है, कॉमन है कहावत, कि एक शब्द हमें सिंहासन पर बिठाता और एक तख्त पर बिठाता, एक तख्ते पर चढ़ा देता है, फांसी लग गई है। तो बोल की बात है, तो भाषा की। अब ये परिस्थिति किसने क्रिएट की, मैं सही ढंग से बोलती तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होती, मेरे बोल के कारण ही तो हुई ना। और इसलिए कहा जाता है कि तोल के बोलो, बहुत सोच समझ के बोलो। अभी का एक वरदान था बाबा की रिवाइज को, उसकी पुस्तकी में, कहाँ बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, ये सोचो फिर बोलो। किसको कह रहे हो आप, अपने से छोटे हैं, हमारे से बड़े हैं, एक लेवल के हैं, कहां पर बोल रहे हो, किसके बीच में बोल रहे, कहां पर बोल रहे और कैसे बोल रहे हो, इस पर तो सारा मदार होता है। और ये आई हुई परिस्थिति हमारी ऐसी अच्छी भाषा से, वो प्रॉब्लम आप सेवा के क्षेत्र में देखते हो कि कई प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन मीठी मधुर प्यार भरी भाषा उसका सॉल्यूशन ले आती है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। और वही अलग टाइप की भाषा होगी तो प्रॉब्लम को, तो परिस्थिति को उत्पन्न करना भी हमारे हाथ में है, कई चीजों में हमारे पर मदार है, और उसको समाप्त करना वो भी हमारे। इसलिए बाबा ने कितना अच्छा छोटा सा स्लोगन दिया है, जो बहुत ज्यादा बोलता है ना वो कहां ना कहां बोलने में गड़बड़ जरूर कर देगा, न कहने की बात कह देगा, न बोलने की बात बोल देगा, बहुत बोलता है तो निकल जाएगा, कितना भी ध्यान दे ना, लेकिन कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर खुद भी समझता है मैंने बहुत बोला ना उसमें निकल गया है, नहीं बोलना चाहिए था लेकिन क्या करूं, अभी बात करते 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 निकल गया, बहुत बोला इसलिए हो गया ना, कम बोलते तो। इसलिए बाबा ने कहा कम बोलो, धीरे से बोलो और मीठा बोलो। इतने छोटे में कितनी शिक्षा दे दी, परिस्थिति का सॉल्यूशन है, कम बोलोगे उसके पीछे भी बहुत सारी बात है। जो कम बोलता है ना उसका लोग सुनने के लिए इंतजार करते हैं, ये तो बोलता नहीं है, कभी कभी बोलता है, तो सब ध्यान से सुनते हैं, कम बोलता है ना तो क्या बोलेंगे, अटेंशन प्लीज, है ना। फिर धीरे से बोलता है तो भी लोग अटेंशन से सुनेंगे, ज्यादा तो बोलती नहीं, धीरे से बोलते हैं तो भी अटेंशन रहता है, और बोलते भी मीठा है, थोड़ा और मीठा तो सबको प्यारा लगता है, ऐसे बोल वालों को स्नेह मिलता, सहयोग मिलता, सम्मान मिलता, प्यार बढ़ता है, हैं? दिल का प्यार। तभी बोल ही तो देखो सारी परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं, भाषा के हिसाब से ऐसे हैं स्वभाव, स्वयं के अंदर के भाव, मेरे अंदर प्रकृति के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर वस्तु के लिए मेरे मन के अंदर भाव कैसे हैं, अपने भावों को देखो। उसी में हमेशा एग्जांपल देती हूँ, हमारे भाव भी है ना फक्षिप्त बहुत होते हैं, ऊपर नीचे ग्राफ है ना, सुबह उठे तो मन के भाव बड़े अच्छे थे, अमृत वेला इतना अच्छा हुआ, भाव मन के अच्छे थे, फिर कर्मों में आए, एक्शन में आए, कुछ बात बनी, भाव डाउन हो गए, है ना, हमारे भाव बदल गए, फिर अलग भाव, दिन भर में कितने भाव चेंज। उस पर हमेशा मैं सोचती हूँ कि आज से कुछ वर्ष पहले के जमाने में, चाहे अनाज के, कपड़े के, दूध के, हर चीज के भाव है ना बहुत स्टेबल रहते थे, बहुत स्टेबल रहते थे। अभी आज के जमाने में रोज के भाव, पेट्रोल का रोज का भाव, अनाज का रोज का भाव, सब्जी का रोज का भाव, दूध का रोज का भाव बदलता है, एक जैसा स्टेबल भाव क्यों, क्योंकि व्यक्ति इन चीजों से जुड़ी हुई है और उनके मन के भाव जितने चेंज होते हैं उतने इन चीजों के भाव भी ये परिवर्तन हमने ही किया है ना, हमारे मन के भावों के बदलने से इन वस्तुओं के भाव भी क्या होते हैं, बदलते हैं। एक जैसा भाव नहीं रहता है मन में, चेंजेस होते हैं और वह स्वयं का भाव वो सही रहे स्वभाव। कभी देखो तो हम फेल कर लेते हैं, कई बार हम चिढ़ जाते हैं, है ना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, कहां स्वभाव में कंपैरिजन की भावना, कई बार स्वभाव में गिराने की बात, रूठने के स्वभाव है, भाई इनको तो जरा सा कहो नाराज होके बैठ जाएंगे, इनको तो जरा कहो तो रोना शुरू कर देंगे, इनको तो जरा कहो तो घर छोड़ के भाग जाएंगे, इनको तो जरा सा कहा तो सुसाइड कर लेंगे। आजकल तो ऐसा ही है ना, किसको कुछ नहीं कह सकते, तुम जो हो जैसे हो बहुत अच्छे हो, उसके अलावा और कुछ नहीं है ना। हमारे स्वामी भाई है ना, वो एक एक्सरसाइज करवाते हैं और सबसे बुलवाते हैं कि कहो कि मेरे माता पिता जो जैसे बहुत अच्छे हैं, मेरा पति बहुत अच्छा, मेरी पत्नी बहुत अच्छी, मेरे बच्चे बहुत अच्छे, अब जो हो बहुत अच्छे बहुत अच्छे है। आजकल किसी को कुछ भी कह नहीं सकते, अच्छे हैं अच्छे हैं अच्छे हैं, बस अच्छे हैं अच्छे हैं अच्छे हैं, वो अच्छे होंगे, नहीं है तो भी अच्छे हो और होने ही वाले हो, वही फिट करना है उनमें, वही फीड करना है। कंप्यूटर में जो फीड करते हैं ना, फिर क्लिक करो तो वो चीज आती है, हमें भी वही फीड करना है सबके अंदर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे अच्छे, बाबा क्या कर रहा है, हम जो हैं जैसे हैं फिर भी बाबा क्या कहते मेरे बच्चे बहुत अच्छे, अरे कोटो में कौ कोई में भी कोई मेरे बच्चे हैं, मैंने तो सिलेक्ट किया है, मैंने तो आपको चुना है ना। बाबा क्या कहते हैं, फिर क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या भर रहे हैं, इससे परिवर्तन हो रहा है, उससे बदलाव आ रहा है। इसलिए हमारे स्वभाव में भी भाव साथ के लिए बहुत बड़ी अच्छे भाव, और भाव स्टेबल। आज के जमाने में भी कुछ शॉप ऐसी होती हैं जिनके भाव आप कितना भी प्रयत्न कर लो वो चेंज नहीं करते हैं। कहते देखो हमारे पास एक ही भाव है, आपको लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो कोई बात नहीं, बाजू में जाओ दुकान है ले लो। हमारे पास तो एक ही भाव से सेल होता है, दूसरा भाव नहीं होता, ऐसी शॉप कोई कोई तो है, हाँ बहुत सारी ना हो गई है, हाँ उनके रेट फिक्स है, और अच्छे अच्छे जो शॉप अच्छी अच्छी कंपनियों की चीज है उनके रेट, जो ब्रांडेड चीज कहते हैं आज के जमाने में, उनके रेट फिक्स होते हैं। हम भी तो ब्रांडेड है ना बाबा के, है? तो हमारे मन के भाव भी एक जैसे होने चाहिए, है ना, फिर बदलने नहीं चाहिए, कभी कैसा भाव कभी कैसे भाव कभी कैसे भाव। तो ये स्वभाव भी परिस्थिति को हटाने में भी उनका योगदान हो सकता है, और स्वभाव से परिस्थिति को उत्पन्न भी किया जा सकता है। ऐसे ही संस्कारों की बात है, संस्कारों से व्यक्ति मजबूर होता है, और संस्कार ऐसी चीज है जो आपको न पुरुषार्थ करना पड़ता, न अटेंशन देना पड़ता है, न स्मृति में लाना पड़ता है, अपने आप में जो संस्कार है वैसे अपने आप में होने लगता है, जैसे संस्कार है वैसे उससे मजबूर होते हैं, उससे अधीन होते हैं अपने आप में। अब वो संस्कार अच्छा हो तो भी ऑटोमेटिक काम करेगा, और वो सही ना हो तो भी अपने आप में वो काम करने वाला है। और इसीलिए ही बाबा संस्कारों का परिवर्तन करने के लिए कहते हैं, नहीं तो हमारे संस्कारों के कारण भी परिस्थिति उत्पन्न होती है। और इसलिए संस्कारों का परिवर्तन जरूरी है कि जो परिस्थिति न उत्पन्न हो। हम तो निमित्त परिस्थिति को उत्पन्न करने के लिए न बने, क्योंकि संस्कार ऑटोमेटिकली काम करते हैं। आप सब देखिए कि जन्म से लेकर के आपको कोई एक ही समय पर चाय पिलाई गई, एक ही टाइम पर अब जब वर्षों तक वो बात चली, अब उतने बजने पर आपको चाय पीने का संकल्प क्या होता है, उत्पन्न होता है, घड़ी मैच कर लेना। मैं कहती हूँ कभी उसी के लिए किसको अलार्म नहीं लगाना पड़ता है, घड़ी में उतने बजते हैं, चाय पीने की इच्छा हुई तो होता है क्या, इतना बज गया होगा इसलिए चाय पीने की इच्छा है मुझे हुई है। संस्कार इसी समय पर वो ही क्रिया आप करते 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 रहे हो, संस्कार बन गया है। इसलिए बाबा भी कहते हैं कि जो अच्छे संस्कार हमें चाहिए, योग में भी कहते हैं एक टाइम एक जगह पर एक संकल्प को लेके बैठो, उससे क्या होता है उसी समय पर वो ही वायुमंडल और वही सोच क्रिएट, ये हेल्प मिलती है योग में। क्यों निमा शाम के योग का टाइम है ना, नहीं तो शाम हुई कभी भी योग कर लो, कर योग तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम मुखर क्योंकि उस समय पर वो ही वायुमंडल क्रिएट होगा। रोज रोज उसी समय पर आप वो ही करते रहे, इसलिए मन भी उसी समय पर वो ही चाहता है, मन को वही भाता है। और इसलिए कई बार हम फील करते हैं कि अभी इतने बजे ना, अभी ये सेवा तो है लेकिन है ना खींच होती है योग के लिए, टाइम हो गया ना 6:30 का, तो अंदर से योग की खींच हो रही है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसी समय पर मन वो ही करता रहा है, इसीलिए वो चीज उसको वो करने के लिए मजबूर करती है, वो चीज खींचती है, क्योंकि उसी टाइम पर वो ही करते रहे हैं। हमें अपने अंदर अच्छे संस्कार डालने के लिए भी बार बार जो हम चाहते हैं अच्छाई, उसको रिवाइज रिपीट करते रहे करते रहे करते रहे, हैबिट बन जाएगी, फिर नेचुरल होगा, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। एक छोटे छोटे चीजों का एग्जाम्पल दूं, बोरीवली में भवन है, हम बहने थर्ड फ्लोर पर रहती हैं, लिफ्ट है, पहले से जाओ तो भी थर्ड का स्विच दबाना होता है, सेकंड पर जाओ तो, फिर ऊपर से नीचे आओ तो भी थर्ड ही दबाना होता है। अब वो प्रैक्टिस पड़ गई ना, थर्ड में ज्यादा यूज होता है, अभी फोर्थ पर भी जाना होगा ना, कई बार तो देखा है कि हम थर्ड से फोर्थ पर जाना होता है, थर्ड पर खड़े रहकर थर्ड को ही दबाती रहती, फिर सोचती मैं ऐसे क्यों कर रही हूं, या और फ्लोर पर जाना था तो भी थर्ड दबा दिया। हैबिट, संस्कार, देखो क्या कर रहे हैं, बिना ध्यान दिए भी बिना बुद्धि लगाए भी वही काम होने लगता है, संस्कार ऐसे काम करते हैं। अभी बार बार वहां जाने के कारण वो हैबिट पड़ गई है ना, ऐसी और जो हैबिट्स हमें अपने आप में डालनी है वो भी बार बार रिपीट होगी तो वो संस्कार हमारे अपने आप में बन जाएंगे। और हमारे संस्कारों के वजह से जो मेरे सामने समस्या उत्पन्न होती है, परिस्थिति जो क्रिएट होती है वो समाप्त होगी। मैं कईयों के संस्कार होते हैं, इनकी बात उनको कहना, इनकी बात जिसको बाबा कहते हैं जर्मी जन्म। अब ये हैबिट होती है, अब उसी के कारण क्या होता है, दोनों के तो झगड़े लगेंगे ही, लेकिन दोनों के आप खुद दुश्मन भी बनोगे, ये फाइनल प्रोग्राम। क्योंकि फिर आपस में पता चलेगा ना कि इसने ही तेरे बारे में कहा, इसने ही मेरे बारे में, देखो ऐसी है, हमने अपनी क्या प्रिंट बनाई, क्या छाप छोड़ी, दोनों के दुश्मन बने। अब संस्कार देखो क्या क्या कर रहे हैं, पर चिंतन के संस्कार हो, परायों के बारे में सोचने का, स्वस्थिति के लिए समय नहीं और परायों की पंचायत के लिए टाइम वेस्ट हो रहा है और अपने आप को हम उनसे वीक कर रहे हैं। या पराई बातें वो अच्छी बातें तो होती नहीं है और उसी का बार बार वर्णन, बार 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 वो चीज मेरे में घुस जाएगी, नहीं है तो आ जाएगी। तो जो खराबी नहीं थी मेरे संस्कार में उसका मैंने आवाहन किया, मैंने इनविटेशन दिया, निमंत्रण दो तो नहीं आए, कहेंगे आपने निमंत्रण दिया था इसलिए मैं आया। अब मैं उसी चीज का आवाहन करती हूँ, उसी को इनवाइट करती हूँ तो वो चीज मेरे में आएगी। फिर सोचते हैं कि देखो पहले तो मैं ऐसी थी नहीं, अब ये कहाँ से आ गया, मैंने बुलाया इसलिए आ गया, कहाँ से कैसे आ जाएगा। ऐसे तो कोई आजकल जाता है किसके घर, बिना बुलाए कोई किसके पास नहीं जाता। हमने इन चीजों का आवाहन किया इसलिए पहले नहीं था, अब कहाँ से आया, लाया तो आया, नहीं तो आए कैसे, ऐसे अपने आप में तो नहीं आ जाते हैं ना उस संस्कारों में चीजें। तो ये संस्कार फिर मजबूर करके काम करवाएंगे, इसलिए हमको अपने संस्कारों को चेक करना है कि उसी के कारण तो मेरे सामने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होते हैं। गुस्से वाला व्यक्ति होगा वो छोटी छोटी बातों में भी क्या करेगा, गुस्सा करेगा। अब उसके कारण दिन भर में वो कितनी बारी डिस्टर्ब होगा, कितनी बारी अपसेट होगा। आज देखो कोई भी चीज की सेटिंग करने में टाइम जाता है, बनाने में टाइम है, विनाश करने में, बिगाड़ने में तो कोई, एक रंगोली बनाओ तो घंटे 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 लग जाते हैं और एक झाड़ू मार दो हो गया काम। बिगाड़ने में टाइम लगता है, नहीं लगता है। तो हम संगम युग में अपनी स्वस्थिति को सेटिंग में लगे हुए हैं, स्टेबल करने में लगे हैं, उसको नेचुरल बनाने में लगे हैं। और फिर ऐसे संस्कारों के माध्यम से बनाया बिगाड़ा, बनाया बिगाड़ा, बनाया बिगाड़ा, संगम युग उसमें ही पास हो गया, गुजर गया। फिर लगता है कि मैंने मेहनत बहुत की लेकिन हुआ रिजल्ट में कुछ नहीं। कारण क्यों रिजल्ट में नहीं, क्योंकि बनाते रहे बिगाड़ते रहे। तो संगम में ये समय मुझे वेस्ट करना ही नहीं है, मुझे तो मेरी स्वस्थिति में स्टेबल रहना है। उसको बनाने वाली बातों को मैं सोचूं, उसको पढ़ूं, उनको देखूं, क्योंकि उसी में लगी हुई हूं मैं, उसी की खोज में हूं, मुझे वो ही चाहिए। दूसरा न कोई। और जो व्यक्ति वो चाह में होता है, ये तीव्र इच्छा होती है उसकी, तो उसको वैसे संयोग मिल जाते हैं, वैसे समीप व्यक्ति आ जाते हैं, वैसे सपोर्टर मिल जाते हैं। आपके संकल्प ही आपके लिए आपको मददगार बनेंगे। मेरा सोच ही सब चीजों को मेरे पास लाएगा, लेकिन मैं सोचती क्या हूं उस पर वो परिस्थिति विचारों से क्रिएट होगी, क्योंकि हम क्रिएटर हैं, हम रचयिता हैं। बाबा ने ये कहा है ना, भाई आत्मा तो क्रिएटर है, रचना करने वाली है। अब कैसी रचना करनी है वो हमारे पर उसका आधार है। प्रकृति के द्वारा भी पेपर आ रहे हैं ना। अभी हमारी दो बहनें गई थी कोचीन में, केरला में। अभी बहुत आप सबने न्यूज देखे होंगे, कितनी बारिश थी। बहनें जब गई तब तो बहुत अच्छा, पहले खराब था, फिर पूछा कि वे ठीक हैं, तो बहनें निकले। बिफोर टाइम फ्लाइट पहुंची और वहां पहुंच के तो न्यूज सुनाया कि बहन क्या अच्छी धूप है, हम तो मजे से आंगन में बैठे हैं। दो दिन में समाचार आया कि सारा सेंटर में, रिट्रीट सेंटर में ग्राउंड फ्लोर सारा पानी से भर गया है। अभी हम ऊपर किचन और ऊपर बठिया सिख चुकी है। और वो बहने एक्सपीरियंस सुना रही थी कि इतना जानवरों के अंदर डूब रहे होंगे ना पानी में, इतनी चिल्लाने की आवाज, हम अपनी चीजों को पानी में तैरते हुए जाते हुए देख रहे हैं। चारों तरफ पानी पानी के सिवाय कुछ दिख ही नहीं रहा है। कैसी लाइटें बंद हो गई, पानी है लेकिन वो पीने के काम का नहीं। ये तो ठीक था, भट्टी थी इसलिए अनाज बनाज भरा हुआ था ना। फोन उनके चले नहीं क्योंकि डिस्चार्ज हो गए। इलेक्ट्रिसिटी है नहीं तो चार्ज कैसे करें, उनसे बात ही न हो पाए, वो हम लोगों से भी कर न पाए। देखो प्रकृति का आपदाएं कैसी है। तो ये प्रकृति की तरफ से भी परिस्थिति तो आएगी, और अभी आएगी तो हमको झेलनी पड़ेगी। कारण ये है कि प्रकृति को भी तमोप्रधान तो हम नहीं बनाया है ना। और इसी के कारण उनके तरफ से जो आएगी उसको हमें सामना करना पड़ेगा। लेकिन अभी बाबा कहते हैं प्रकृति की सेवा करो, योग बल के द्वारा, शुभ भावनाएं द्वारा, शुभ संकल्पों के द्वारा उसको भी आप उनके प्रति भी सेवा भाव योगदान करो। तो भले वो तूफान करेगी लेकिन आपको नहीं सताएगी। हमारे संतोष बहन की ये बात मुझे बहुत अच्छी कि प्रकृति की जितनी सेवा करोगे ना उतना वो फिर आपको तंग तूफान करेगी, आपको तंग नहीं करेगी। तो मुझे याद आया कि एक एग्जाम्पल, बॉम्बे में हमने एक सेवा स्थान लिया, बहुत बड़ी सोसाइटी है, लेकिन आजकल सेफ्टी का इश्यू बहुत है, तो सोसाइटी ने कहा कि आपकी एक्टिविटी नहीं चल सकती यहाँ पर, क्योंकि बहुत लोग आते हैं जाते हैं, है ना। आजकल तो बहुत ऑफिशियल हो गया है, उनका नाम लेना, नंबर लेना, कार्ड लेना, पहले बात करना, भेजे तो ऊपर जाने दे, नहीं तो जाने नहीं देना। कहते आपकी एक्टिविटी यहाँ नहीं चल सकती। बपरे, इतना करोड़ का फ्लैट ले लिया और अभी एक्टिविटी नहीं करने देंगे। कुछ दिन तो गए, हमने सोचा कि दूसरा कोई स्थान देखे। उतने में हमें पता चला कि वहां जो सोसाइटी की कमिटी है वो टोटल चेंज हुई है। तो मैंने कहा चलो अभी नए आए हैं उनको अप्रोच करके देखें। तो उसने कहा कि आप जिस विंग में, वहां ए बी सी डी बहुत विंग होती है, तो आपकी विंग का ही और आपके पड़ोस में है वो सेक्रेटरी बना है। तो हमने फोन किया कि भाई आप आओ मिलो। मिले तो उनसे बातचीत हुई, और उसने आके देखा कि ये कार्य इस प्रकार का है। और आपके जमाने में तो आप जानते होंगे कि वो जो सेक्रेटरी बना था वो बॉम्बे में भाई कहते हैं उसको, समझते हो ना भाई को। तो अब वो था, जब आया तो भी काला लंबा चौड़ा और इतने गहने बहने, हम तो देख के भी वो हो गए, लेकिन हमने अपनी बात रखी। लेकिन उसको अच्छा लगा तो कहती है कि अरे आपको कौन रोक सकता है, आप लोग तो इतना अच्छा काम करते हो, कल से स्टार्ट करो, कौन बोलता है आपको, मैं देखता हूँ। तो भी हम लोग डर रहे थे, हमने कहा हम थोड़े थोड़े लोगों को योग के लिए थोड़ा दिन भेजते हैं, फिर देखते हैं ये बोलता तो है। फिर धीरे धीरे योग शुरू किया और धीरे धीरे सेटल भी हो गए, अभी अच्छे से चल रहा है सेंटर। मैंने इसलिए ये बात आपको कही कि दुनिया के लिए वो खतरनाक आदमी है, खतरनाक से खतरनाक, और वही बाबा के लिए मददगार। वहाँ खतरनाक, यहाँ मददगार। अभी भी कभी कभी मिलता है, कहते हैं बहन कोई तकलीफ हो तो बोलना, हम लोग यहाँ बाजू में है। आप मानोगे नहीं, ऐसा खतरनाक कि सोसाइटी में दिन में 10 बजे एक व्यक्ति को कटवा दिया, आजू बाजू वाला कोई कुछ बोल, इतना खतरनाक। और बाबा के कार्य के लिए सेवा, उसकी भी सेवा करो। वो भी शुभ वाइब्रेशनों को, शुभ भावनाओं को तो हर आत्मा को छूता तो है ही ना। तो देखो परिस्थिति क्या थी कि हमको वो बेचना पड़े और दूसरा खरीदना पड़े, उससे फिर परिस्थिति क्या हो गई, बदल गई, चेंज हो गई। और अभी सारी सोसाइटी कोऑपरेटिव हो गई है, लेकिन शुरू में तो प्रॉब्लम था ना, सॉल्व हुआ, खतरनाक व्यक्ति से सॉल्व हुआ। है ना, वो दुनिया के लिए अलग दृष्टिकोण से भाई है और हमारे लिए अलग दृष्टिकोण से भाई है। इसलिए हमारी भावनाएं भाव एक जैसे सदा रखते रहें तो परिस्थिति क्या होगी, बदल जाएगी। ओम शांति।
आदरणीय दीदी जी का हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं समझती हूँ बहुत सारी बातों का जवाब आज मिला है और यहाँ से हम हल्के होकर के जा रहे हैं। एक बार फिर दीदी जी आपका बहुत 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 थैंक्स, जो इतना समय आपने स्पेयर किया है। अभी सुना, आप सभी ने, दीदी कह रही है कि मुझे या तो आप सबको मिलने नागपुर आना पड़ता, इसके बजाय यही मिलन हो गया है। नागपुर तो आना पड़ेगा ना दीदी, इनका इतना बड़ा रिट्रीट हाउस का उद्घाटन है तो हम सबको बुलाएंगे ना ये लोग।
सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया से हम हो गए बेखबर, खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए। मैं।